अस्सलाम वालेकुम। लिविंग विद विजन सेशन नंबर 8। आज जो सेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये मैंने प्लानिंग ये थी कि ये सेशन तकरीबन मतलब के एंड में बताया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हार्ड कोर विजन की अचीवमेंट के बारे में नहीं है। जैसे इससे पहले जो सेशंस हुए हैं उन सब में आपने नोट किया होगा कि हम लोग विजन्स के टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे, विजन के बारे में कैसे सोचना है, उसको विजन बोर्ड पे कैसे लगाना है, फिर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे इवैल्यूएट करना है, और उसके बाद अपनी टीम कैसे सिलेक्ट करनी है, अपने से हम ख्याल लोगों को कैसे ढूंढना है या उन्हें अपना हम ख्याल बनाना है। तो हम विजन के बहुत से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे बात कर चुके हैं। मीनवाइल मुझे ग्रुप में से जो हमारे लार्जर ग्रुप्स हैं, हैया अल फलाह है और कुरान लेसन्स है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एक्टिव ग्रुप्स हैं, उसमें से और विजन्स के ग्रुप में से भी लोगों ने अप्रोच किया कि डॉक्टर अफशां ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन लोगों के साथ ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसे वाक़यात लोगों को पेश आते हैं दुनिया में उनकी अपनी ज़िंदगी में कि वो बिल्कुल कुछ अरसे के लिए पैरालाइज हो जाते हैं, वो लोग जैसे ज़िंदगी उनके लिए मफलूज हो जाती है, और जब ऐसे हालात पेश आएँ तो उन्हें फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि जो आप बातें करती हैं, मतलब दो ख़वातीन ने तो मुझे ये भी कहा था कि आपकी बातें सुन के हमें डिप्रेशन होता है, जो बड़ा ही दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी को डिप्रेस करने के लिए बात नहीं करती, लेकिन उन्होंने मतलब सही कहा उन्होंने, आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ये बात की कि आपकी बातें सुन के हमें एक किस्म का डिप्रेशन होता है, हमें लगता है कि हम ये काम कभी भी नहीं कर सकते, और ये डॉक्टर अफशां पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रही हैं। इसके अलावा दो ऐसे मेंबर्स हैं हमारे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, और उन्होंने ये कहा कि हम लोग आजकल अपनी ज़िंदगी के एक बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, ऐसी चीज़ों से हमें डील करना पड़ रहा है जैसे जो पहले कभी भी नहीं हमें फेस करना पड़ा, और बल्कि ये कि मुझे लगता है कि ग्रुप में हमारे करीबी दोस्तों में कोई भी शायद ऐसा नहीं है जो उन हालात में से गुज़र रहे हैं जिनसे ये लोग गुज़र रहे हैं। एक खातून जो हैं तो वो बहुत सीरियस लॉस है उनकी ज़िंदगी में, यू नो शी इज़ लॉस्ट हर हस्बैंड, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, ख़ुद भी वो बहुत यंग खातून हैं, और एक दूसरी खातून है जो कि शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट डिवोर्स, उनके भी एक या दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और बड़ी यंग और ख़ूबसूरत खातून हैं, और वो यानी कि एक विजनरी लड़की थी वो, लेकिन अब उसके कुछ हालात ऐसे बन गए हैं और उसकी मसले मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि शी इज़ नाउ इन कोर्ट, और वो बड़ा एक मुश्किल टाइम उनके ऊपर आया हुआ है। एक और खातून है हमारे ग्रुप में जो मतलब कि एक डिवोर्स में से गुज़र चुकी हैं, और अब वो अपने भाई के घर आई हुई हैं, वहाँ रह रही हैं, और उनके साथ तीन बच्चे हैं जिनमें से बड़ा बच्चा जो है वो कॉलेज जाता है, तो वो ये कहती हैं। इन सब ख़वातीन के मुख्तलिफ यानी ये हालात मैंने आपको इसलिए बताए कि जब हम विजन की बात करते हैं और हम लोग अपनी ज़िंदगी में मकसद ये ढूंढ रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद बामकसद बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द हमारे करीबी दोस्तों में बल्कि हमारी बातें सुनने वालों में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो बहुत प्रोफाउंड लॉस में से गुज़र रहे होते हैं, और उस वक्त उनको ज़िंदगी में मकसदियत तो बहुत दूर की बात है, उनको रियली अपनी ज़िंदगी की भी कुछ नहीं समझ आ रही होती है कि आखिर यू नो आज का दिन तो गुज़र गया, कल क्या होगा और परसों क्या होगा और फिर अगले महीने क्या होगा और अगले साल क्या होगा। तो बेसिकली ये जो एक सब्जेक्ट है जो विजन्स में पढ़ाया जाता है और काफ़ी एंड में पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि अगर हमने ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है तो मैं इस चीज़ को इसी वक्त टैकल कर लूँ और मैं इस तरह का एक डायलॉग, इस तरह की एक डिस्कशन यहाँ शुरू कर दूँ जिससे सुनने वालों को ये एहसास ना हो कि हमें बस एक ही जैसे लोगों से हम बात कर रहे होते हैं और वो सब लोग बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में सेट हैं और उनके घर भी बिल्कुल पुरसकून हैं और वो उनके बच्चे भी बड़े अच्छी तरह सेटल्ड हैं और वो हंसी खुशी रह रहे हैं। तो ये एक बहुत आई थिंक एक गलत इम्प्रेशन है जो मेरी गलती है, शायद मैंने दिया था, क्योंकि एक बामकसद ज़िंदगी गुजारना हर किसी का हक है, चाहे उनके हालात जैसे भी हैं, चाहे उनके वाकयात उनके साथ होने वाले जैसे भी हैं, चाहे वो किसी भी लॉस में से गुज़र रहे हैं या वो किसी दुख में से गुज़र रहे हैं। ज़िंदगी को ज़ाया करना जो है वो कोई भी नहीं डिज़र्व करता, चाहे वो खौफ की वजह से हो, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से हो, चाहे वो किसी माजूरी की वजह से हो, ज़िंदगी जैसी खूबसूरत नेमत को ज़ाया नहीं किया जा सकता। तो ये जो सारे इस तरह के हालात हैं उनके लिए इंग्लिश में एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको एडवर्सिटी कहते हैं, यानी कि एडवर्सिटी के लिए उर्दू में मुझे कोई लफ्ज़ नहीं समझ आता, लेकिन बेसिकली मुश्किल हालात आप ये समझें कि जब इंसान को इतने मुश्किल हालात दरपेश आ जाते हैं कि उसको अपने गिर्दोपेश की भी समझ नहीं आती है, उसको ये बिल्कुल नहीं समझ आता कि वो अपने आप को कैसे समेटे, तो फिर उस वक्त वो कैसे अपनी ज़िंदगी से और अपनी विजन से कनेक्टेड रह सकता है और वो किस तरह अपने आप को समेट के अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे फ्यूचर का सफ़र शुरू कर सकता है। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये है ओवरकमिंग एडवर्सिटी, कि आप कैसे इन हालात से गुज़र कर अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें बेसिकली सबसे पहली मिसाल मैं आपको एक खातून की देती हूँ। मेरी मुलाकात उनसे बहुत साल पहले हुई थी, मुझे अब याद भी नहीं है, दिस इज़ 2018। तो उन खातून से मेरी मुलाकात आप समझें 10 या 11 साल पहले हुई थी, बहुत अरसा गुज़र गया है। और वो मेरे पास आई थी मेरे क्लिनिक में जहाँ पर मैं काम करती थी, और एक दफ़ा आई अपने एक बच्चे को लेके, और बच्चे के सिर पे एक बड़ा सारा ज़ख़म था, और उसने मुझे कहा कि ये मेरा बच्चा जो है छत से गिर पड़ा है। बच्चा 6 साल का था और वो जो ज़ख़म था उसका वो माथे पे नहीं था, वो उसके बिल्कुल सर के ऊपर था, क्राउन ऑफ द हेड पे था। तो मैंने खैर उसको धोकर और इमरजेंसी भेजा कि आप इसमें स्टिचेस लगा दें, खूबसूरत घने बाल थे बच्चे के। तो जब वो बच्चा वापस आया वहाँ से तो इन खातून को मैंने कहा कि आपके बच्चे के सिर पे जो ज़ख़म है वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी जगह से गिरने की वजह से हुआ है। अगर कोई बच्चा कहीं से गिरे तो सर के सामने या पीछे वाले हिस्से पे ज़ख़म लगता है, ये बिल्कुल इसके सर की टॉप पे लगा हुआ था, जैसे इसके सर पे किसी ने एक कहीं कोई वार किया है। तो वो काफ़ी एजिटेट हो गई वो खातून, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे झूठा कह रही हैं, आप गलत कह रही हैं, आप जब पता नहीं बाहर से जो पढ़ के डॉक्टर आ जाते हैं वो तो ऐसी बातें करते हैं। खैर, और वो बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। दूसरी दफ़ा जब वो मेरे पास आई हैं तो खासी खुद परेशान थी और पसीने पसीने थी और उनको बुखार भी हुआ हुआ था, और मुझे आके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंची हूँ, बात यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई, उनको मैंने कहा कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। दरअसल बात यह है कि मैं गायनी की डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको गायनी में भेज देती हूँ। तो वो एकदम से बड़ी परेशान होगी, मुझे कहती नहीं 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 मैं गायनी मैंने नहीं जाना, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ, और अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं तो ठीक है। तो मैंने कहा कि शायद ये बहुत एंक्शस हो गई है या परेशान हो गई है या ऐसे कोई माली मदद की ज़रूरत है। मैंने उसको कहा सुनो, तुमने टेस्ट करवाने हैं, तुम बहुत मुझे पेल लग रही हो, तुम्हें बुखार भी हुआ हुआ है, तो प्रेगनेंसी में ये सारी बड़ी ख़तरनाक बातें हैं, तुम ऐसा करो कि अपने ये वाले टेस्ट करा लो। और वहाँ पे एक फ़ंड होता था मरीज़ों का, उसमें से मैंने उसको कुछ मदद करके दी। मैंने कहा जाओ तुम ये काम कर लो। खैर, वो चली गई वहाँ से, फिर वापस आई चंद दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर आई मेरे पास, और मुझे उसने कहा कि ये देखो मेरा टेस्ट तो पॉजिटिव है और मेरे पेट में बच्चा है, बात दरअसल ये है कि मैं तुमसे ना तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मुझे टीबी है। तो मुझे, मैंने बड़ा डरी मैं उसकी बात सुन के। मैंने कहा कि यार आपको टीबी है, आप क्या कर रही हैं। तो मैंने उसको खैर वहीं रोक लिया और हम एक टीबी का फॉर्म होता था, मैंने कहा कि ये मैं आपके लिए भरती हूँ और आपको टीबी की दवाइयाँ फिर मुफ्त मिलेंगी। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा तुम ऐसे करो कि 6 फॉर्म उठा लो क्योंकि मुझे 6 लोगों की दवाइयाँ चाहिए। तो मैंने, मतलब मैं समझी कि वो गलत कह रही थी, मैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि 6 डायग्नोस्ड पेशेंट कहीं टीबी के बैठे हुए हों और ये एक औरत जो है ये उन सब की दवाइयाँ लेकर जाए। क्योंकि टीबी का इलाज जो है वो इस तरह होता है कि मरीज़ को हम अपने सामने क्लिनिक में दवाई देते हैं और उसको खाते हुए देखते हैं वो दवाई, इसको डॉट्स कहते हैं। और टीबी की दवाई हुकूमत की तरफ से मुफ्त दी जाती है लेकिन बहुत एहतियात के साथ। तो उसको मैंने कहा कि नहीं, ये तो नामुमकिन है कि मैं तुम्हें 6 लोगों की दवाई दे दूँ, लेकिन तुम अपनी दवाई लेके जा सकती हो। तब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई और उसने मुझे ये कहा कि इस तरह है कि मेरा शौहर जो है वो शरबत बेचता है, ठेले में वो शरबत बना बना कर भेजता है, मैं उसको बना के देती हूँ, कभी मैं उसको छोले बना के दे देती हूँ, कभी मैं शरबत देती हूँ। और मेरे 7 बच्चे हैं, ये जो मेरी प्रेगनेंसी है ये मेरा 8वां बच्चा है, 11 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। और मेरा शौहर जो है दरअसल उसको टीबी थी और उससे फिर हम सबको टीबी लगी है, मुझे भी लगी हुई है, मेरे 4 बच्चों को भी लगी हुई है। तो मैंने कहा कि तुम्हें लगी हुई है और तुम्हारे 4 बच्चों को लगी, तुम लोग 5 लोग हो गए और छठा तुम्हारा शौहर है। सॉरी, उसने कहा था कि मुझे 7 लोगों की दवाइयाँ चाहिए। तो उसको मैंने कहा 7वां कौन है तुम्हारे यहाँ टीबी का? तो कहने लगी कि वो मेरे शौहर की दूसरी बीवी है। सुभान अल्लाह, आप ज़रा आप ये सुने आप कि वो उसने दूसरी शादी भी कर ली, मेरे जब पता नहीं 4 बच्चे थे या कितने, तो उसने दूसरी शादी कर ली। और वो दूसरी शादी उसने एक 13 साल की लड़की से की थी। जितने पैसे मैंने जमा किए थे, मैंने कहा कि हम अपना एक कमरा बनाएंगे क्योंकि हम एक खेमे में रहते हैं। और मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैंने उसे छुपा छुपा के पैसे जमा किए, लोगों के बर्तन धो धो कर, लोगों के बच्चे पाल कर, और मैंने कुछ पैसे जमा किए कि जो हमारा वहाँ पे जो खैमा था वहाँ पर हम एक पक्का कमरा बनाएंगे जिसमें हम रहेंगे या हम घर बनाएंगे, जो भी कुछ हज़ार रुप चंद हज़ार रुपए थे वो सारे रुपए लेकर उसने क्या किया कि 13 साल की एक लड़की ख़रीदी और उसके साथ उसने शादी कर ली। उस 13 साल की लड़की को जो है वो उसका भी एक या 2 बच्चे हैं उसके, बेटा हुआ उसका। और अब उसको जो है तो रीढ़ की हड्डी जो है उसकी, उसमें टीबी हुई हुई है और वो बिस्तर पे पड़ी होती है और वो चल फिर भी नहीं सकती। और अब वो माजूर हैं और उसके 2 बच्चे हैं जो मैं पाल रही हूँ और उसका भी मैं ध्यान रखती हूँ, उस लड़की का भी मैं ध्यान रखती हूँ। तो 7वां मरीज़ जो है वो लड़की है। मतलब आप ये सुन के मेरे तो बिल्कुल होश उड़ गए। उस औरत की शक्ल मैं देख रही थी कि ये औरत, मतलब, और उसको देखने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो इतनी गरीब है या उसका इतना बुरा हाल है। अच्छे खासे बस साफ़ सुथरे ठीक ठाक कपड़ों में आती थी, बच्चे भी उसके ठीक ठाक होते थे, उनकी सेहतें इतनी ख़राब नहीं थी और उसको अच्छी खासी नॉलेज थी टीबी के बारे में, डायग्नोसिस उसको पता थी। वो अपनी जो उसकी जो सौकन थी वो उसको हॉस्पिटल लेके जा चुकी थी, उसके एक्सरेस थे उसके पास कि ये देखो इसकी रीढ़ की हड्डी में टीबी हुई हुई है। तो उसको, खैर मैं बहुत इम्प्रेस हुई उस औरत से उस वक्त, और एक लिहाज से मतलब हमारे दरमियान एक ताल्लुक बन गया। और फिर वो जो थी वो छोटे छोटे कोई हाथ के काम करती थी, चीज़ें बनाती थी, मैंने उससे वो ख़रीदनी शुरू कर दी और मैं हॉस्पिटल में और लोगों को भी बताया कि आप भी ख़रीदा करें। तो आहिस्ता 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 करते करते खैर वो उसकी चीज़ें बहुत पॉपुलर हो गई, एक वक्त में बल्कि वो हज़ारों रुपए की चीज़ें बेच रही थी हॉस्पिटल में। और ये मेरा और उसका एक ताल्लुक़ था जो चलता रहा। एक दिन मैंने उससे ये पूछा कि ये जो तुम्हारी ज़िंदगी है, मतलब तुम शाम रात को तुम सोचती नहीं हो कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप कहीं और रह गए, तुम्हारे बहन भाई ने तुम्हारा कुछ नहीं पूछा, इतने सारे तुम्हारे बच्चे हैं, उसमें से भी कितने बीमार हैं जिनकी दवाइयाँ तुम्हें नहीं मिलती हैं, फिर तुम्हारा शौहर है, तो तुम सोचती नहीं हो कुछ इसके बारे में? तुम्हें नहीं लगता कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी है तुम्हारी, कैसे तुम गुजारा करती हो, कैसे चलती रहती हो? तो जो उसने मुझे बात कही थी वो बिल्कुल, यानी कि मेरे दिल पर वो बात नक्श हो गई। उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब बस मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे सब कुछ भूल जाए, बस सांस लेना ना भूले मुझे। तो ये बात यानी कि सब कुछ मुझे भूल जाए, यानी वो सब चीज़ों को पसे पुश डालकर हर सुबह ये सोचकर उठती थी कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कीप ब्रीदिंग, कि बस अपना सर जो है आप पानी से ऊपर रखें और सांस लेते रहें और कोशिश करें कि कहीं डूब ना जाएं, वरना फिक्रें इतनी हैं और टेंशन्स इतनी हैं और मसले मसाइल इतने हैं कि उनमें डूबना बहुत आसान है और इंसान का अक्सर दिल चाहता है कि वो उसमें डूब ही जाए और सांस लेना बंद कर दे और उसकी ये जो मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो ये एक कहानी मैंने इसलिए इससे शुरू किया कि ये मेरे लिए ख़ुद बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है। मैंने ख़ुद उस औरत से बहुत कुछ सीखा, बल्कि मेरी जो जैसी भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी ऐसी तो नहीं है जैसी उसकी थी, लेकिन जब भी कोई ऐसे मसले मसाइल मुझे दरपेश आए, किसी सिचुएशन से मुझे गुजरना पड़ा, तो मुझे उसकी बात बहुत याद आती थी कि डॉक्टर साहब सब कुछ भूल जाएँ कोई बात नहीं, बस सांस लेना ना भूलें। तो जो लोग इस तरह के लॉस में से और इस तरह की टेंशन में से और एडवर्सिटी में से गुज़र रहे होते हैं, तो मैं उनको ये नहीं कहती हूँ कि एक विज़न जो है वो आपकी एडवर्सिटी ख़त्म कर देगी और आपके मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और कल सुबह जब आप उठेंगे तो आप हशाश बशाश और खुश होंगे। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कह सकती, अगर मैं ऐसा कहूँगी तो मैं झूठ बोल रही होंगी, गलत बात कर रही होंगी। लेकिन जो लोग लॉस को फेस कर रहे हैं और मसले मसाइल में हैं और जो लोग नहीं भी कर रहे, जिनकी एक अपनी रेगुलर ज़िंदगी है, आप सब के लिए और मेरे अपने लिए भी मैं ये कहूँगी कि बामकसद ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि बस आप जो हैं तो कायद आज़म की तरह आप फेथ यूनिटी डिसिप्लिन के उसूलों पर कायम हैं और आप एक मुल्क बना रहे हैं। बामकसद ज़िंदगी जो है ना, सबसे पहले वो ज़िंदगी जो है वो एक रीज़न पे मबनी होती है। बामकसद ज़िंदगी गुजारने वालों को अपनी ज़िंदगी के रीज़न्स पता होते हैं, उनको ये पता होता है कि वो दुनिया में क्या करने आए हैं या वो दुनिया में क्या करना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है, ठीक है जी। तो जब हमें कोई मुश्किल दरपेश आती है, जब हमें कोई सख्ती दरपेश आती है, इस तरह की सख्ती कि हम वही बात कि ज़िंदगी पैरालाइज हो जाती है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या होगा, तो उसमें एक तो ये याद रखें कि सांस लेना ना भूलें, सांस लेना बहुत ज़रूरी है, बल्कि गहरी गहरी सांसें लिया करें, ढेर सारी ऑक्सीजन, ताकि आपका दिमाग ठीक काम करे। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट रहने के जो रीज़न्स हैं, अगर आपको याद हो जब हमने ये सीरीज़ शुरू की थी तो मैंने आपको विक्टर फ्रैंकल की एक बात बताई थी। विक्टर फ्रैंकल जो यहूदी आदमी था जो एक नाजी कैंप में बंद हुआ, जहां उसने अपने माँ बाप को और अपने भाई को और अपनी बीवी को मरते हुए देखा, वो आदमी जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उसने ये कहा है कि यानी कि वो जो रीज़न्स टू लिव वाली बात है ना, कि उसके पास फिर जब मरीज़ आते थे, जब वो आज़ाद हो गया और उसने अपनी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू की जर्मनी में और बेल्जियम चला गया था वो, तो वहाँ पर जब उसके पास बहुत डिप्रेस मरीज़ आते थे, वही जैसे उनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता था कि ज़िंदगी को कैसे हैंडल करें और हम अपनी ज़िंदगी में क्या करें, तो वो उनसे एक बात पूछता था कि वाई डोंट यू कमिट सुसाइड। बड़ा ही एक अजीब सवाल है ये, हम पहले दूसरे सेशन में ये डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको एक किताब की तस्वीर भेजी थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो वो अपने मरीज़ों से पूछते थे कि आप खुदकशी क्यों नहीं कर लेते हैं, और मरीज़ के जो भी जवाब होते थे वो बड़े केयरफुली नोट करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये वो बातें हैं जिसके ज़रिए इनको मोटिवेट किया जा सकता है, जिसके ज़रिए हम इनके दिमाग तक और इनके सोच की गहराई तक पहुंच सकते हैं और वो चीज़ें फिर हम उनके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विक्टर फ्रैंकल का ये कहना था कि आप सबसे पहले ख़ुद से ये पूछें कि आखिर मेरी ज़िंदगी में, यानी मेरी ज़िंदगी तो नहीं इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं तो इतना डिप्रेस हूँ और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल कंफ्यूज्ड है और इसका रियली कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि ज़िंदगी का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप अपने आप से ये पूछें कि मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म क्यों नहीं कर लेती, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि मैं इस ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड हूँ। तो मेजॉरिटी लोग, जैसे मैंने अभी आपको अपनी एक दोस्त की मिसाल बताई जो हॉस्पिटल में मेरी दोस्त बनी थी, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो कहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, या कोई ये कहेगा कि मेरे माँ बाप कोई हर किसी के अपने कनेक्शंस होते हैं, मतलब ये तो मैंने आपको दो बहुत बड़ी मिसालें दी हैं कि पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो हमारे इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनके लिए हम ये कहेंगे कि हम इसीलिए तो यार हम कैसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये आपने अब एक कनेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया है जो आपको ज़िंदा रहने पर एक लिहाज से मजबूर कर रहा है। और एक दफ़ा जब हम ये कनेक्शन आइडेंटिफाई कर लें तो फिर रियली आगे की एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती है। फिर आपने ये पूछना है अपने आप से कि अगर मैं कल बिस्तर से ना उठी और सारा दिन बेड पे पड़ी रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा, या जो भी मेरी ज़िंदगी में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जो मेरा कनेक्शन है उसका क्या होगा। आप जो भी आप यानी कि आप ये कहते हैं कि उफ मैं इतनी डिप्रेस हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी से ना मिलूं, तो इसे आगे जो है इस डायलॉग से आगे आप इस जुमले से आगे सिर्फ एक छोटी सी बात लगा दें कि अगर मैं किसी से ना मिलूं तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। या फिर आप ये कहें कि जब भी मुझसे कोई बात करता है मेरा दिल चाहता है कि धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दूं, तो उससे आगे आप एक जुमला लगा दें कि अगर मैं हर किसी की बात सुन के धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी एक सवाल, और वो सवाल आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि सिर्फ आप अपने आप से ये पूछें कि आखिर मेरी ज़िंदगी में किस चीज़ की वैल्यू है कि मैं इस ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड हूँ, व्हाट इज़ कीपिंग मी अलाइव। और अक्सर ये वो चीज़ नहीं होगी जो आप खो चुके हैं, जैसे कोई ये कहता है कि अब मेरे डिवोर्स हो गई है सो आई हैव नथिंग टू लिव फॉर, अब मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। या कोई ये कहे कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड जो हैं फौत हो गए हैं, दिस पर्सन हैज़ पास्ड अवे सो आई डोंट वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू लिव विदाउट दिस पर्सन। तो ये बात जो है ना कि आई डोंट वांट टू लिव, इसके आगे आपने फिर अपना वो सवाल लगाना है कि अच्छा अगर मैं ज़िंदा ना रहूँ तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मरीज़ों का क्या होगा। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि इस दुनिया में हम लोग नेटवर्क पैदा हुए हैं, हम बिल्कुल इंडिविजुअल नहीं पैदा हुए, हमारे साथ ऐसे कनेक्शंस होते हैं और हमारे साथ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें इस ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड रखते हैं। ठीक है जी, ये पहला टेस्ट है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है तो आपने ये टेस्ट अप्लाई करना है। दूसरा टेस्ट जो है, और ये बहुत मशहूर टेस्ट है, इसको व्हाट इफ़ टेस्ट कहते हैं। ये हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं कि जब जैसे मेरे जहन में अगर कोई रिसर्च का आइडिया है तो मैं मेरे उस्ताद मुझे उन्होंने सिखाया है कि आप ये कहेंगे कि व्हाट इफ़ मैं अपनी रिसर्च से ये बात साबित कर दूँ। जैसे अगर मेरे जहन में ये है कि मैं एक रिसर्च करके ये साबित करूँ कि डबल रोटी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है, मसलन मेरे जहन में ये बात है, अब मैं वो मुझे कहेंगे कि अच्छा अफशा अगर आपने साबित कर भी दिया तो व्हाट इफ़ द यू नो यू प्रूव दैट ब्रेड इज़ बैड फॉर हेल्थ। इसमें ऐसी क्या बात है, किस लोगों को तो पहले से पता है कि इट इज़ बैड फॉर हेल्थ, फिर भी वो खाते हैं, तो आपकी जो रिसर्च है रियली ये इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो यही बात मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो भी आपका करने को दिल चाहता है अपनी इस दीवानगी में, अपनी इस डिप्रेशन में, इस अफसोस में, इस दुख में, आपने ये सोचना है कि व्हाट इफ़। आप ये कहें कि इस वक्त जो मेरी ज़िंदगी है ये बहुत बुरी है, और फिर आप ये सोचें कि व्हाट इफ़ मेरी डिवोर्स ना हुई होती। सोचें ज़रा, अगर ना हुई होती तो जिस रिश्ते में से आप निकल के आई हैं या जिस रिश्ते को आप छोड़ चुके हैं, आप एक्चुअली ये विश कर रहे हैं कि वो ना ख़त्म हुआ होता। फिर आपने एनालाइज़ करना है कि अगर वो ना ख़त्म हुआ होता तो आज आपकी ज़िंदगी कैसी होती। क्या आप अभी से ज़्यादा खुश होते, क्या आप अभी से ज़्यादा सेहतमंद होते। और चीज़ें नहीं सोचनी, ये नहीं कहना कि जिस मर्द को या जिस औरत को छोड़ के हम आए हैं वो तो इतना अच्छा था, क्योंकि अगर वो अच्छा था तो फिर रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ, रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है ना। तो अगर वो वैसा ही है, उसको फिर उसके ऊपर कोई नहीं अपनी विश लगानी है कि वो भी बहुत अच्छा हो गया है और वो भी बहुत प्यारी हो गई है, और नहीं, वो वैसा ही है, वो वही शख्स है या वो वही औरत है जिसको आप छोड़ कर आए हैं। और अगर आप उन्हें छोड़ चुके हैं तो फिर आप ये सोचें कि अगर हमने उन्हें ना छोड़ा होता तो आज हमारी ज़िंदगी कैसी होती। इसी तरह अगर कोई लॉस को फेस कर रहा है, मसलन अगर किसी के पेरेंट्स में से खुदा ना खास्ता कोई गुज़र गया है या किसी का कोई फैमिली मेम्बर गुज़र गया है जो एक लंबी तकलीफ़ दे बीमारी से गुज़रे हैं, जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ अपनी दोस्त का, मैंने आपको बताया कि उसको अपनी सौकन का ध्यान रखना होता था, उसका शौहर हेरोइन एडिक्ट था और वो अपने चार बच्चे, सौकन के दो बच्चे, एक अदद सौकन और ख़ुद, और वो भी फिर प्रेग्नेंट भी थी। तो उसको अगर ये औरत अगर ये कहती कि व्हाट इफ़ यू नो ये आदमी मेरी ज़िंदगी में ना होता, वो तो ऐसे कहेगी ना, तो फिर उसकी ज़िंदगी की कोई और सूरत हाल होती। लेकिन जब आप व्हाट इफ़ टेस्ट अपनी ज़िंदगी पे लगाते हैं और आप ये कहते हैं कि व्हाट इफ़ यू नो अभी जो सिचुएशन है इससे कुछ मुख्तलिफ होता, और हर एक मुख्तलिफ अल्टरनेटिव पे आप सोच कर देखें, ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता, तो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है यही आपको सबसे ज़्यादा सूट करती है, यही सिचुएशन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी सिचुएशन में आप ने आगे बढ़ना है और इसी सिचुएशन से आपकी आगे की ज़िंदगी सारी जो है वो डिटरमिन होगी। इसके अलावा कोई और सिचुएशन किसी और डायमेंशन में हम फिज़िकली नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद तीसरा टेस्ट, और इसका तो डायरेक्ट विजन से ताल्लुक़ है, कि आपने सीरियसली बैठकर सोचना है, बल्कि लिखना है कि आज से 5 साल बाद मैं कहाँ हूँगी। जैसे मैं अपने लिए सोचूं कि अफशां आपके बैंक में आज इतने पैसे हैं, 5 साल बाद बैंक में इतने पैसे होंगे, आपका बच्चा आज मेडिकल के फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ है, 5 साल बाद ये डॉक्टर बन रहा होगा, आपकी अम्मी जो हैं वो उनका आज इतनी उम्र है अम्मी की और 5 साल बाद इंशाल्लाह उनकी इतनी उम्र होगी, और वो जो हैं तो वो अगर ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं तो वो ब्लड प्रेशर की ये कॉम्प्लिकेशंस खुदा ना खास्ता डेवलप कर चुकी होंगी, वो मज़ीद कमज़ोर हो चुकी होंगी, उनको मज़ीद मेहनत की मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत होगी। फिर मैं ये सोचूं कि अफशा आज आप जो हैं तो आपने ये सोचा है कि मैंने ये काम करना है, मसलन आपने एक क्लिनिक बनाना है, तो 5 साल बाद क्या वो क्लिनिक बन चुका होगा, वो कहाँ पर होगा, उसकी कैसी शक्ल होगी, उसके लिए कितने पैसे चाहिए हैं। तो ये डायरेक्ट विजुअलाइजिंग की एक्सरसाइज है, और ये मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कहती हूँ। जैसे मेरी दोस्त ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब सारी बातें भूल जाएं, जो कुछ हो चुका है वो गुज़र चुका है, बस सांस लेना ना भूलें। तो देखें, अच्छे बुरे हालात हर किसी को पेश आते हैं, किसी के थोड़े अच्छे, किसी के बहुत अच्छे, किसी को थोड़ा सा बुरा, किसी को इतना बुरा कि कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे मैंने आपको अपनी फ्रेंड की अभी बात बताई है, मतलब कि ये कहानी, और ये मैंने उससे इजाज़त ली थी, उसको मैंने कहा था कि अगर मैंने कभी ये कहानी लिखी तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पूरी इजाज़त है, जो तुम्हारे दिल में आता है करो, मैं इतनी गरीब हूँ और मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ, मैं वहाँ से खैमा उखाड़ के कहीं और चली जाऊँगी। वो बड़ी एक ज़बरदस्त कैरेक्टर था वो औरत जो थी, एक बहुत अनयूजुअल कैरेक्टर था वो, और मुझे कभी भी नहीं भूलेगी वो। मुझे नहीं मिली, मतलब मैंने वो जगह छोड़ दी, और वो भी फिर शायद वहाँ आती होगी, मेरा पूछती होगी, लेकिन मेरी उससे मुलाकात, आप समझें कि 2010 के बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। जहाँ भी हो, खुश हो, अल्लाह उसे बहुत खुश रखे और अल्लाह उसको सेहत दे और उसके बच्चों को भी। लेकिन उसकी बात मुझे बार बार याद आती है कि बस डॉक्टर साहब सांस लेना ना भूलें। तो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूर करनी होती हैं, सांस लेना होता है, चलना फिरना होता है, बच्चों का ध्यान रखना होता है, बेयर मिनिमम जो है ना, मुश्किल हालात में बस वो करते रहें, खैर है। और मुश्किल हालात और टाइम जो है ना, ये सब कुछ गुजर जाता है, ये सब कुछ चेंज हो जाता है, बल्कि ये लोगों को भूल जाता है। आप यकीन करें, अगर मैं आपको आज कहूं कि ये जो आपका दुख है या आपकी जो तकलीफ़ है ये आपको 4 साल बाद याद भी नहीं होगी, तो शायद आप मुझे बहुत बुरा भला कहें कि देखें जी, हम तो इतनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं और आप कह रही हैं कि आपको याद भी नहीं होगा। लेकिन बिलीव मी, जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने सीखा है दुनिया में, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कुरान में भी अल्लाह ने यही कहा है कि जंग उहद में जब मुसलमानों को बहुत बड़े लॉस का सामना था, मैसिव लॉस, हज़रत हमज़ा शहीद हो चुके थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबरें थीं, वो एक और डिप्रेशन की वजह थी, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر وہ تو زندہ تھے, لیکن قرآن میں پھر جو وحی میں آیا ہے کہ تلک الایام, یہ تو دن ہے. آج کیسا دن ہے, کل کوئی اور دن ہوگا, پرسوں کوئی اور دن ہوگا, آج فرائیڈے ہے, پھر سیٹرڈے ہے, پھر سنڈے ہے, ویکینڈ ہے, پھر منڈے آ جائے گا, تم نے پھر منہ لٹکائے ہوئے ہوں گے. تلک الایام ندا ولوہا, نو ہم, اور پھر ہے دال, دال الف لام, یعنی کہ یہ جو ہے نا لفظ, یہ ہے آہستہ آہستہ کھینچنا, اور کھینچنا بھی ایسے جیسے کنویں میں سے کوئی ایک برتن کو کھینچتا ہے. فدلاہما, آپ نے دیکھا ہوگا نا, پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا, شیطان نے انہیں دھکا دے دیا. تو یہ ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو کھینچنا, جیسے کنویں میں سے ہم ڈول نکالتے ہیں, کنویں میں سے ہم پانی بھر کے جو برتن نکالتے ہیں, اس حرکت کو یہ کہتے ہیں. اور وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تھوڑا اوپر آتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, پھر اوپر آتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, یا کبھی کبھی تو ایکچولی ایک راؤنڈ چیز پہ رسی کو لپیٹ کے اسے نکالا جاتا ہے کنویں سے. تو تلک الایام, یہ تو دن ہے, نداولہا, انہیں ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں, بین الناس, لوگوں کے درمیان. آج کسی کا کیسا دن ہے, کل کسی اور کا کیسا دن ہے, کل اس کا پھر کوئی اور دن ہے, آج ہمارا کوئی اور دن ہے, کل ہمارا کچھ اور بن جانا ہے. تو یعنی ایک دن میں ہم جو فیل کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم پوری زندگی پہ نہیں محیط کر سکتے. آج کا دن ہمارا جو ڈپریشن یا دکھ ہے یا لاس ہے, اس نے کل میں کم ہو جانا ہے, پرسوں اس سے بھی کم ہو جانا ہے, ترسوں اس سے بھی کم ہو جانا ہے. ہو سکتا ہے پانچ دن کے بعد ایک دم سے ہمیں ایک ڈپریشن کی لہر اٹھے اور یہ پھر بہت زیادہ ہو جائے, اس کے بعد پھر یہ کم ہو جائے گا. تو دن جو ہیں, ایک دن پہ اپنی زندگی کو نہیں بیٹ کیا جا سکتا. دوسری بات, ایک اچھی زندگی بہت سے اچھے دنوں کا مجموعہ ہے, لیکن یاد رکھیں کہ بہت سے اچھے دنوں میں بہت سے برے دن بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. بس ضروری امر یہ ہے کہ سانس لینا نہ بھولیں. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.